पृष्ठ संख्या 193। वियतनाम युद्ध, फ्रांसीसियों की घोर पराजय, साम्यवाद के परिसीमन की नीति के कारण संयुक्त राज्य को वियतनाम में एक लंबी लड़ाई में उलझना पड़ा। पिछले अध्यायों में हिंद चीन, इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलनों के उदय का उल्लेख किया जा चुका था। 2 सितंबर 1954 को ही हो ची मिन्ह ने वियतनाम की स्वतंत्रता और वियतनामी जनवादी गणतंत्र की स्थापना की घोषणा की थी। फ्रांसीसियों ने वहां पुनः अपना शासन स्थापित करने की कोशिश की। इस काम में ब्रिटेन ने और बाद में संयुक्त राज्य ने भी उसकी सहायता की। इस प्रकार 1946 से फ्रांस भी इस लड़ाई में कूद पड़ा। चूंकि वियतनाम में राष्ट्रवादी शक्तियों का नेतृत्व साम्यवादी दलों द्वारा किया जा रहा था, अतः डल्लेस ने वियतनाम की लड़ाई में अमेरिका के प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का समर्थन किया और वह फ्रांस पर लड़ाई जारी रखने का दबाव डालता रहा, जिसके लिए संयुक्त राज्य फ्रांस को आर्थिक सहायता भी दे रहा था। वियतनामी सेना हो ची मिन्ह के नेतृत्व में लड़ाई कर रही थी, जिसके लिए उसे सोवियत संघ और चीन से सहायता मिल रही थी। लेकिन वियतनामी सेना को मुख्य रूप से अपनी शक्ति पर और अपने देश में प्राप्त जन समर्थन पर अधिक भरोसा था। 1954 में फ्रांसीसी सेना को घोर पराजय का मुंह देखना पड़ा। वियतनामियों ने दियन वियन फू नामक स्थान में 12,000 फ्रांसीसी सैनिकों को घेर लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति आइजनहावर ने डल्लेस की यह सलाह मानने से इनकार कर दिया कि संयुक्त राज्य को अपनी सेनाएं वियतनाम में भेजनी चाहिए। जुलाई 1954 में जेनवा में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार वियतनाम पर फ्रांसीसी शासन समाप्त हो गया। वियतनाम को अस्थायी तौर पर 2 हिस्सों, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में विभाजित कर दिया गया, लेकिन देश को चुनावों के बाद एक कर दिया जाना था। 1956 में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। वियतनाम युद्ध में संयुक्त राज्य ने नगो दिन दीम के तानाशाही और भ्रष्ट शासन के अधीन दक्षिण वियतनाम को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में खड़ा करना आरंभ कर दिया। सबको विश्वास था कि चुनावों में हो ची मिन्ह का दल ही विजयी होगा। संयुक्त राज्य की सलाह और उसके समर्थन के बल पर दीम की सरकार ने चुनाव कराने का निर्णय से इनकार कर दिया। संयुक्त राज्य ने उत्तरी वियतनाम का प्रतिरोध करने और दक्षिण वियतनाम के गुरिल्ला छापमारों को कुचलने के लिए दक्षिण वियतनामी सेना को तैयार करना शुरू कर दिया। संयुक्त राज्य के समर्थन के बावजूद अपनी घटती लोकप्रियता के कारण 1963 में दीम की सरकार पतन के कगार तक पहुंच गई। आखिर संयुक्त राज्य आर्थिक समर्थित तथा एक सैनिक तख्तापलट में उसका शासन समाप्त कर दिया गया। संयुक्त राज्य की सरकार दक्षिण वियतनाम में साम्यवाद विरोधी शासन कायम रखने की नीति के प्रति अधिकाधिक प्रतिबद्ध होती चली जा रही थी। संयुक्त राज्य के नीति निर्माताओं ने इस संदर्भ में एक खास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे डोमिनो का सिद्धांत कहा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि दक्षिण वियतनाम साम्यवादियों के अधिकार में चला गया तो अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का भी पतन हो जाएगा और वे साम्यवादी शासन के अधीन चले जाएंगे तथा अंत में पूरे विश्व या पूरे एशिया में साम्यवाद फैल जाएगा। संयुक्त राज्य ने अब अपने सैनिकों को सैनिक सलाहकार के रूप में वियतनाम भेजना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसने नियमित लड़ाकू सैनिक भी भेजने शुरू कर दिए। 1967 के अंत तक वियतनाम में लड़ने वाले अमरीकी सैनिकों की संख्या 5 लाख तक पहुंच गई। अनुमान है कि 1967 तक संयुक्त राज्य द्वारा वियतनामी क्षेत्रों पर गिराए गए बमों की शक्ति पूरे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समूचे यूरोप पर गिराए गए बमों की शक्ति से अधिक थी। वियतनाम में संयुक्त राज्य द्वारा चलाई जाने वाली लड़ाई संयुक्त राज्य के इतिहास की सबसे अधिक लोकप्रिय लड़ाई थी। सारी दुनिया के लोगों ने इसकी निंदा की, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य के लोगों ने भी अपनी सरकार की भर्त्सना की। 1945 के बाद दुनिया भर के लोगों ने किसी भी एक घटना के प्रति एकजुट होकर इतना विरोध प्रकट नहीं किया था जितना उन्होंने एकमत होकर वियतनाम युद्ध का किया था। 1973 में संयुक्त राज्य ने वियतनाम से अपनी सेनाएं हटा ली। अप्रैल 1975 तक वियतनाम सेना के पैर पूरी तरह उखड़ गए और उनके साथ बचे खुचे अमेरिकी सैनिक सलाहकार भी वहां से कूच कर गए। इस लड़ाई में 58,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 3 लाख घायल हुए। सैनिक असैनिक वियतनामी हताहतों की संख्या इससे बहुत अधिक थी। पूरा देश तबाह हो गया। इसके शीघ्र बाद वियतनाम एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में उदित हुआ। एशिया के एक छोटे से देश के हाथों विश्व की सबसे बड़ी सैनिक शक्ति की पराजय समकालीन विश्व के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी।